रात्रि क्लास चल रहा था 14/1/1967 पहले पेज के मध्यांक में बात चल रही थी हमारा बेहद का बाबा जिसे हम कहते हैं शिव बाबा। हम आत्माओं का बाप हम सब आत्माएं हैं निराकारी ज्योति बिंदु। जिन्हें गीता में कहा गया अणोणियां समन स्मरेत्य तो निराकार आत्माओं का निराकार बाबा ज्योति बिंदु जिसका बड़ा आकार पूजा करने की सुविधा के लिए शिव के मंदिरों में आज भी यादगार में पूजा जाता है वो बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाकी दुनिया में धर्म तो बहुत हैं, उनके धर्म पिताएं भी हुए इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि, परंतु नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कोई नहीं कर सका। और ही दुनिया पुरानी तमो प्रधान होती गई, क्योंकि वो सभी धर्म पिताएं देह अभिमानी थे, अपन को देह समझते गए। निराकार आत्मा नहीं समझा, मनुष्य तो थे परंतु वास्तव में सृष्टि के आदि में मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं। सृष्टि की याद में जरूर सृष्टि सात्विक होगी, क्योंकि दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजोगुणी और अंत में तमोगुणी। चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई प्राणी हो, कोई वस्तु हो, मकान हो, दुकान हो, सबको प्रकृति के तीन गुणों से गुजरना पड़ता है। लेकिन आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव उनको अपना शरीर नहीं है, वो सदा शिव निराकार है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। इसलिए त्रिकालदर्शी है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं अपने भूत भविष्य को भूलती रहती हैं। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर सदाशिव निराकार होने से कभी भी तीनों काल के ज्ञान को भूलता नहीं, अर्थात सत्य का ज्ञाता है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सृष्टि की आदि मध्य और अंत की सच्चाई को दुनिया में कोई नहीं जानता, कोई धर्म पिताएं भी नहीं जानते। एक वही शिव सत्य है। इसलिए अंग्रेजों में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। ज्ञान को ही सत्य कहा जाता है, अज्ञान को असत्य कहा जाता है। जो सत्य है वो सदा काल है, जो झूठ है अज्ञान है वो सदा काल नहीं हो सकता। जो गीता में भी लिखा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, तो इस सृष्टि पर भी सत्य बाप के द्वारा स्थापन किया हुआ सत्य सनातन धर्म सृष्टि के आदिकाल से ही चला आया है और अंत तक चला चलता रहेगा। जैसे गीता में लिखा है ये ईश्वरीय ज्ञान, ये सत्यता भारत में सदा काल स्थायी रहती है। भले ये सत्यता कहो, ईश्वरीय ज्ञान कहो, प्रायः लोप होता है गीता के अनुसार, मैंने बहुत करके लुप्त हो जाता है। फिर भी भारत में कहीं न कहीं उसके उदाहरण देखे जाते हैं। जिस सत्य ज्ञान से सत्य सनातन धर्म की स्थापना हुई थी उसके फॉलोअर्स परिवार ज्वाइंट फैमिली के रूप में आज भी भारत में भले दुर्लभ हैं फिर भी देखे जा सकते हैं। 70-70, 80-80 परिवार के भातियों का परिवार एक के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। जो परिवार का प्रधान मुखिया होता है मजाल नहीं कि उसकी मत के विपरीत तो कोई कार्य करे। जो भाषा मुखिया बोलेगा वो ही भाषा परिवार के सभी प्राणियों की होगी। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मातृभाषा सबकी एक ही होगी, परंतु द्वैतवादी द्वापर युग से, जब से ये द्वैतवाद फैलाने वाले धर्म पिता हैं, जो अपन को देह समझते रहे, जब से आए इस सृष्टि पर, दो दो भाषाएं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो से चार, चार से आठ स्थापन होती चली गई। तो दुनिया में द्वैतवाद बढ़ने से झगड़े बढ़ेंगे या घटेंगे? सारी वसुधा एक कुटुंब बन ही नहीं सकती, क्योंकि सारी वसुधा में वसुधैव कुटुंबकम का नारा सच्चाई से चलता रहे, इसके लिए सारी वसुधा का, सारी मनुष्य शक्ति का एक पिता होना जरूरी है। एक बाप का ही पता नहीं मनुष्य सृष्टि को, तो मनुष्य सृष्टि में एकता कैसे स्थापन होगी? वसुधैव कुटुंबकम ये नारा तो लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो नहीं देखने में आता। ये सारी मनुष्य शक्ति एक वृक्ष के समान है, जिस कल्प वृक्ष कहो, सृष्टि वृक्ष कहो, गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। वट वृक्ष भी कहा, बड़े से बड़ा वृक्ष बड़ा का वृक्ष ही होता है, और उसका बीज अति सूक्ष्म होता है। हम आत्माएं अपने शरीर रूपी वृक्ष के बीज हैं, चैतन्य बीज, परंतु सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी तो कोई होगा, होगा या नहीं होगा? तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, उसका भारतीय शास्त्रों में गायन है, क्योंकि बीज को बाप कहा जाता है। इसे जगत का बीज शास्त्रों में गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। सारे जगत के पिता शंकर को माना जाता है। इसीलिए एक महादेव शंकर का ही नाम है जो निराकार शिव के साथ जोड़ा जाता है, सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है। और देवात्माओं में या 33 करोड़ देवताओं में या सारी मनुष्य शक्ति में या मनुष्य शक्ति में जो भी दुखदायी राक्षस हैं, उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। इससे साबित होता है कि वो निराकार शिव बाप जब कलयुग के अंत में महा दुखदायी रौरव नरक बने हुए कलयुग के अंत में आते हैं, तो नरक को बदल करके स्वर्ग बनाते हैं। कौन सी ताकत से? नाम ही है स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गया। स्वर्ग में जाने लायक आत्म स्थिति वाले बनते हैं। अपन को देह, संबंधियों को देह, समझने वाले आत्माभिमानी नहीं कहे जाएंगे। सदैव जिनको स्मृति रहे कि मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान ज्योति बिंदु हूं, जैसा मेरा बाप अति सूक्ष्म ऐसे मैं आत्मा भी अति सूक्ष्म हूं। परंतु कलयुग के अंत में आकर के इस दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र अपन को देह समझने लगते हैं। जिन मनुष्यों को नर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नर, नारी नहीं कहा जाता है। अरे मनुष्य जाते हैं तो उसमें नर से ही नरक क्यों बनता है? नर के साथ हैं तो नारियां भी, परंतु नारियों को बोल दिया नारी नरक का द्वार। और भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो लक्ष्मी जैसी नारियों को ही सत्य का कलश, ज्ञान का कलश देते हैं। क्योंकि भगवान के आने पर सत्य बाप के आने पर नारियां ही स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती हैं। इसलिए आज भी देवियों की पूजा होती है जिन्हें शिव शक्ति कहा जाता है। पुरुषों को शिव सत्ता नहीं कहा जाता, क्योंकि इस संसार में जो भी पुरुष मात्र हैं, खास तो द्वैतवादी युग में वो सब सत्य का ज्ञान तो रखते हैं, रख सकते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। भले भगवान आता है, भगवान से भी सुनते हैं। सिर्फ सुनते सुनाते ही नहीं, समझते भी हैं गहराई को और दूसरों को समझाते भी हैं। लेकिन उस सत्य को, जो सत्य का ज्ञान जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है, गीतापति भगवान ही आकर के वो ज्ञान देता है, उस ज्ञान को इस सृष्टि के पुरुष मात्र प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके नहीं रख सकते। क्यों, क्या कारण, कोई कारण होना चाहिए या नहीं? नहीं है? होना चाहिए। कारण है, जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देख करके छोटे करेंगे। इस मनुष्य सृष्टि का बाप जिसे जगत पिता कहा जाता है, शंकर कहा जाता है, वो शंकर भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं निराकार शिव, शिव के बाद शंकर का नाम जुड़ा रहता है, जो भारत में आज भी परंपरा चल रही है। कोई फर्म हो, दुकान हो, तो उसमें बाप का नाम पहले डालेंगे और बच्चे का नाम बाद में डालेंगे। रामको एंड संस कंपनी, श्याम बाबू एंड संस कंपनी, तो हम आत्माओं का बाप शिव और उस शिव ने आकर के हम बच्चों को जो गीता ज्ञान दिया और उस गीता ज्ञान में जो राजयोग सिखाया, जिसमें बड़ा राज भरा हुआ है। जैसे गीता में लिखा है, गुह्यात् गुह्यतरम् ज्ञानम्। मैं जब आता हूं तो गुह्य से गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। तो गुह्य ज्ञान सुनाने वाला वो शिव आत्माओं का बाप तो है। तो बाप कुछ वर्षा देता होगा, बाप माना ही वर्षा। बाप हो और वर्षा न दे, वो बाप कैसे हो सकता? तो क्या वर्षा देता होगा है? हाँ, निराकार आत्माओं का बाप है तो निराकार आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा ही देगा ना। निराकारी वर्षा है ज्ञान, वो सर्वश्रेष्ठ चीज है इस दुनिया की, जो ज्ञान भगवान आकर के देता है। मनुष्य रूप में धर्म पिताएं जो ज्ञान देते हैं, वो सब नर हैं। नरक ही स्थापन करते हैं, इस दुनिया को नरक ही बनाते हैं। एक शिव आत्मा ही है सुप्रीम सोल, सबका पिता, जिसका कोई पिता नहीं। इस मनुष्य शक्ति में जड़ जंगम शक्ति में जो जगत पिता है उसका भी पिता, माने मनुष्यों में जो ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी है, रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, उसका भी पिता। तो वो शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो क्या देता है, अभी बताया। निराकार आत्मा रूपी बच्चों को निराकारी ज्ञान देता है। एक एक को अलग अलग देता है या लेने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लेते हैं। वो सिर्फ सच्चाई का रास्ता बताता है। सत्य बात बताता है। जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। गीता माता आज भी भारत में सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई गई है। दुनिया के कोई भी धर्म वाले क्यों न हो, उनके धर्म ग्रंथों में उतना गहरा ज्ञान नहीं है जितना गहरा ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है। और एक ही ये धर्मशास्त्र है दुनिया का जिसका नाम भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। और सात धर्मशास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए या गाए हुए हैं। तो भगवान जब आता है वो तो निराकार है, उसको अपना शरीर ही नहीं है, क्योंकि वो तो अकर्ता है। अच्छे बुरे कर्म करे तो देह के बंधन में आए, गर्भ में आए। वो तो गर्भ में आता ही नहीं, देह का जन्म लेता ही नहीं, वो जन्म मृत्यु के चक्र से न्यारा है। एक ही आत्मा है तीनों लोकों में। चाहे सुखधाम हो, चाहे दुखधाम हो, चाहे शांति धाम हो, वो एक ही तुरीय आत्मा उसको किसी आत्मा के साथ टैली नहीं किया जा सकता। तुरिया है, तो जिसको अपना शरीर ही नहीं है वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आत्मलोक से नीचे आएगा, जिस आत्मलोक को परमधाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम अबोड, मुसलमान कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता, हिंदू मानते भी हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवंत जैसे इस शरीर में आत्मा ही ऊंचे से ऊंचे है, तो शरीर के अंगों में जो सबसे ऊंचा अंग माना जाता है उत्तमांग वाणिवास करती है। अपने राज्य में राजा सबसे ऊंचा होता है, तो ऊंची राजगद्दी पर बैठता है, उस राज्य में उसे ऊंची गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता। उस ऊंचे धाम का वर्णन गीता में है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक, जहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता, नागनी का प्रकाश पहुंचता, ये सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे मेरा धाम है। तब धाम परम, वो मेरा परम धाम है, जहां आत्माएं प्रलयांत काल में निवास करती है। नंबर वन, कोई ऊंची स्टेज में, कोई नीची स्टेज। वो शिव सुप्रीम सोल ऊंची से ऊंची स्टेज में रहता है, तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। मुसलमान लोग भी उसे ऊंचे से ऊंचा अल्लाह मानते हैं। तो वो इस सृष्टि पर जब आता है, अपने बच्चों को अपना परिचय देने के लिए तो शरीर है ही नहीं उसको, तो कैसे आके सुनाएगा समझाएगा। तो गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत आत्माएं भी प्रवेश कर जाती है, परंतु मैं तुरीय आत्मा हूं, इसलिए मेरा दिव्य जन्म गाया हुआ है, भूत प्रेत आत्माएं जिसमें प्रवेश करती हैं उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है, आवाज बदल जाती है, भाषा भी कभी कभी बदल जाती है, क्रियाकलाप बदल जाते हैं। परंतु मैं जिस साधारण तन में प्रवेश करता हूं उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हल्की फुल्की आत्मा हूं। जो भूत प्रेत बनते हैं उन पर पापों का बोझा बहुत होता है, इसलिए उनकी आत्मा भारीपन महसूस करती है। तो चेहरा मोहरा बदल जाता है, हरकतें बदल जाती है। मैं जब प्रवेश करता हूं तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर सवाल है, मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें ऊंचते ऊंचे भगवान बाप है? जब तुरिया ज्ञान सुनाते, जैसा ज्ञान इस मनुष्य सृष्टि में कोई ने न सुनाया हो, और उन ज्ञान की बातों को कोई भी तार्किक रूप से काट भी नहीं सकता। गीता को सब शास्त्र में ही शिरोमणि कहा जाता है। तो वो गीता का ज्ञान सभी शास्त्रों से टैली भी किया जा सकता है, लेकिन बाइबल हो, पुराण हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, महाभारत हो, पुराण हो, सभी ग्रंथ दाढ़ी मूछ वाले पुरुषों के द्वारा लिखे हुए हैं। दाढ़ी मूछ विकारी मनुष्यों को होती है, देवताओं को नहीं होती। तो विकारी मनुष्यों के द्वारा जो भी रचना की जाएगी उसमें कुछ न कुछ विकृति तो जरूर आएगी। कोई न कोई भूल जरूर रह जाएगी। इसलिए कहा जाता है मनुष्य भूलों का पुतला है। कोई भी मनुष्य को आज दुनिया में 16 कला संपूर्ण देवता नहीं कहा जा सकता नारायण के समान। तो वो शिव इस संपूर्ण सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का आत्माओं का पिता भी है। फिर जब मनुष्य तन में गीता के शब्द के अनुसार प्रवेश तुम प्रवेश करने योग्य प्रवेश करता है तो सारी मनुष्य सृष्टि का वो बाबा भी है, ग्रैंडफादर। और बाप का वर्षा कोई को मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा, बाबा का वर्षा लाजमी मिलता ही मिलता है। तो 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र इस सृष्टि के, जिनकी आबादी कलयुग के अंत तक गिनी जाती है। वो कोई भी धर्म के हों, जब अपन को देह भूल करके आत्मा समझ कर बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस पक्की हो जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मेरे सामने कोई भी आए संबंधी, दुश्मन हो या दोस्त हो, सभी ज्योति बिंदु आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई को देह की दृष्टि से न देखे। किस दृष्टि से देखे? मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा और सामने वाला भी ज्योति बिंदु आत्मा, आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक बाप की संतान। तो ऐसा जब भ्रातृत्व भाव पक्का हो जाता है, सारी मनुष्य शक्ति में, तब कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम्। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य मात्र एक ही परिवार के सब भांति है। उस वसुधैव कुटुंबकम् के सभी भांतियों को निराकार बाप का, निराकारी ज्ञान का वर्षा नंबरवार मिलता है। क्यों नंबरवार? क्यों सबको एक जैसा क्यों नहीं? अरे परंपरा अभी तक चली आ रही है, खासकर भारत में ये परंपरा है कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी, या मध्यम या छोटे बच्चों को दी। तो ये परंपरा कहां से चली? ये परंपरा कलयुग के अंत में और सतयुग आदि जब होने वाला होता है, उन दोनों युगों के संगम में परमपिता शिव आकर के ये परंपरा चलाते हैं कि इस मनुष्य शक्ति में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें बड़ा बच्चा कौन? वो त्रिकालदर्शी है तो जानता है या नहीं जानता? तो इस मनुष्य शक्ति का जो बीज रूप बाप है, जिसे सारी मनुष्य शक्ति का, सारी मानवीय प्रजा का पिता कहा जाता है, प्रजापिता, प्रमाणे प्रकृष्ट रूपेण जा माने जायते। जो प्रकृष्ट रूप से जन्म लेते हैं मनुष्य आत्माएं, अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानते हैं, परमपिता परमात्मा आकर के उनको ज्ञान देता है कि तुम देह नहीं आत्मा हो। तो ये ज्ञान लेने वाली आत्माओं में सबसे बड़ा बच्चा कोई होगा या नहीं होगा?
होगा।
तो सबसे बड़ा बच्चा जो होता है, जिसे सारी मनुष्य मात्र प्रजा का पिता कहा जाता है शास्त्रों में, और वो ऐसी मनुष्य आत्मा है जिसका शरीर, शरीर रूपी रथ कहो, उस रथ का आधार लेकर के जो शरीर रूपी रथ है परमपिता शिव के पास नहीं है, उस रथ का स्पेशल आधार लेकर के उसका नाम देता है परम ब्रह्म। ऐसे तो ब्रह्मा नामधारी और जिनके चित्र दिखाए जाते हैं वो चतुर्मुखी ब्रह्मा पंचमुखी ब्रह्मा गाए हुए हैं, लेकिन उनमें कोई तो अव्वल नंबर ब्रह्मा होगा। उसका आधार लेता है तन का, तो परम ब्रह्म कहा जाता है। परम माने बड़े से बड़ी, परे से परे मां, माँ में एक विशेष गुण होता है जो गुण पिताओं में नहीं होता, भाइयों में नहीं होता, बहनों में नहीं होता। क्या गुण? संसार की सारी माताओं में वो गुण देखा जाता है, सहनशीलता। जिस सहनशीलता से परिवार के बच्चों को मां पालती है, परिवार का पिता, परिवार के छोटे बड़े भाई, छोटे बड़ी बहने उस सहनशीलता से पाल सकते हैं क्या? पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते। इसलिए शिव जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां। इस मनुष्य सृष्टि में जितनी भी माताएं हैं जो सहन कर रही हैं, उन सभी माताओं के बीच वो परम ब्रह्म के रूप में माने जाने वाले पांच मुख, चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बहुत सहन किया। उनसे जाति कोई सहन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं हिस्ट्री में कि जो भी धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं आते हैं उनको धर्म के धक्के जरूर खाने पड़ते हैं और बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। और धर्म पिताएं तो हद के धर्म पिताएं, बेहद 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के बाप नहीं है, लेकिन भगवान आकर के जिनको माता के रूप में ग्रहण करता है, परम पिता है ना, तो उसे क्या चाहिए? सच रूपी परिवार स्थापन करने के लिए माता चाहिए ना। तो वो जो गाया हुआ है शास्त्रों में भी गाया हुआ है, ब्रह्मासो विष्णु, जो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा है अभी अभी बताया, दाढ़ी मूछ वाला विकृत होता है, विकारी होता है या नहीं होता है? है? होता है। जो विकारी दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा है, विकारी होने के कारण उसके यादगार मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती पूजा करने के लिए, याद भी कोई नहीं करता, क्यों है? क्यों याद नहीं करता है? कोई कारण होगा? अरे वो जब तक पुरुषार्थ करके विष्णु पद ना पाए चार सहयोगी भुजाओं वाला, और विष्णु का अर्थ ही है नो विषैटाल, पुरुषार्थ करके विकारी मनुष्य से क्या बन जाए, विष्णु जैसा परम पदधारी देवता बन जाए, तब उसकी पूजा होती है, ब्रह्मा के रूप में पूजा नहीं होती। तो वो चाहे परम ब्रह्म हो, चाहे कोई भी नंबर का ब्रह्मा हो, पवित्रता की ही पूजा होती है, अपवित्र की पूजा नहीं होती है। तो वो हमारा बेहद का बाबा शिव बाबा परम पुरुष है, पुरुषों में परम, परे ते परे रहने वाला, वहां तक पहुंच किसी की है ही नहीं। पांच सौ सात सौ करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाबा है, जिससे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा? ज्ञान का वर्षा मिलता है। नंबर बार उसके दिए हुए ज्ञान के वर्षे को जो जितना महत्व देता है वो इस मनुष्य शक्ति में उतना ही ऊंचा पार्टधारी बनता है। सबसे जाति कोई महत्व देता है तो वो विश्व का मालिक बन सकता है राजयोग सीख करके, नहीं तो नंबर वार ज्ञान को महत्व देता है ईश्वरीय ज्ञान को, तो इस मनुष्य शक्ति में 84 के चक्र में नंबर वार राजा बनेगा। सारे विश्व का राजा नहीं बन सकता, इस सारी मनुष्य शक्ति में ये साबित हो गया कि ईश्वरीय ज्ञान से ईश्वरीय ज्ञान के समान कोई भी बात कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इतनी महत्वपूर्ण हो। जो बात गीता में भी कही गई है, नहीं ज्ञान सदृशं पवित्रम यह विद्यते, इस दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। इसलिए ये गाया हुआ है कि भगवान ने जो मुरली गाई, मुरली सुनाई ज्ञान की मुरली थी, कोई काठ की मुरली नहीं थी। हाँ ये जरूर है कि मुरली एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो मीठी तान सुनाने वाला है। तो भगवान ने भी इस सृष्टि पर आकर के माता के रूप में जो ज्ञान की लोरी गीता ज्ञान दिया वो मीठी वाणी में दिया। ऐसी मीठी वाणी जिस वाणी को ब्रह्मा माता के प्रत्येक पुत्र ने मीठा ही माना, कड़वा अनुभव कभी नहीं किया। शास्त्रों में उस वाणी को कहा गया है भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा नामधारी दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य के द्वारा जो माता का पार्ट बजाया वो माता की पूजा क्यों नहीं होती ब्रह्मा की? उन मंदिरों में देखा कि चतुर्मुखी ब्रह्मा पंचमुखी ब्रह्मा की पूजा हो रही हो? नहीं। कारण क्या है? कोई कारण होगा या नहीं होगा? बिना कारण के तो कोई कार्य होता ही नहीं। तो कारण क्या है? है
बीच में शरीर छोड़ दे,
कारण है उस ब्रह्मा के मुख से निकली जो वेदवाणी कही जाती है, विद माने जानना, वेदवाणी माने जानकारी देने वाली वाणी सच्चाई की, उस वेदवाणी को सुना तो सुनाई तो गई, सुनाने वालों ने सुनाई, सुनने वालों ने सुनी, लेकिन समझा समझा किसी ने नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में देखा जाता है कि आज वेदवाणी को कोई पढ़ता है? वेदों की ऋचाओं को कोई पढ़ता है? सुनता है? न सुनता है, न पढ़ता है, न पढ़ाता है, न सुनाता है। क्यों? बात सुनी गई लेकिन उसकी गहराई को समझा किसी ने नहीं। जो कहते हैं कै समझे कवि, कै समझे रवि, या तो रवि माने ज्ञान सूर्य भगवान ही उतर आए तो उस वाणी की गहराई को समझा सकता है सुप्रीम टीचर के रूप में, जिससे बड़ा टीचर कोई होता ही नहीं। या तो ज्ञान सूर्य बता सकता है, या तो वो कवि उतर आए पहचान लिया जाए। जो कहते हैं व्यास प्रसादात, गीता के श्लोक में लिखा है व्यास के प्रसाद से प्रसन्नता से ये ज्ञान विस्तार को पाया, गीता ज्ञान मिला। तो और ये भी कहते हैं वेद व्यास, माने वेद किसने लिखे? व्यास ने लिखे। तो वो दाढ़ी मूछ वाला व्यास जो मनुष्य रूप में कोई ऊंचे से ऊंचा कवि हुआ, उसने जो भी सुनाया या बाद में उसे लिखा गया वो कभी तो बाद में रहा नहीं, क्योंकि मनुष्य सब जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं। तो उस गीता ज्ञान का, उस वेदवाणी का सही इंटरप्रिटेशन, सही व्याख्या कौन करेगा? जो सबकी समझ में आए, 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र उसे इनकार न कर सके, ऐसी व्याख्या कोई कर सकता है? सिवाय ज्ञान सूर्य भगवान के, अथवा वो पुराने से पुराने कवि व्यास के।
तो ऐसे ही है।
जितने दुनिया में इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु वो धर्म पिताएं आए, उन्हें उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को लिखा था या बोला था, बाद में उनके परवर्ती जो फॉलोअर हुए उन्होंने लिखा। जैसे शास्त्रों में भी आता है व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए, परंतु ये किसी ने नहीं जाना कि ये परंपरा कहां से शुरू हुई है। परंपरा तब से शुरू होती है जब इस सृष्टि की महामृत्यु कल्पांत काले के समय साक्षात भगवान शिव इस सृष्टि पर उतरते हैं, तो वो दाढ़ी मूंछ वाले ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं, सुनाते हैं। जैसे माता बच्चों को लोरी सुनाती है, व्याख्या नहीं दी उस समय, विस्तार नहीं बताया। दुनिया में भी ऐसे ही होता है, छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी नॉलेज लेते हैं वो प्राइमरी नॉलेज माता भी दे सकती है, देती है कि नहीं, परंतु प्राइमरी नॉलेज में जो कबीर दास के दोहे, तुलसीदास के कवित्त, सूरदास के कवित्त छोटे छोटे बच्चे रट तो लेते हैं लेकिन उनके गुह्यार्थ को नहीं जानते। माता भी गुह्यार्थ नहीं बता सकती, फिर वो ही बच्चे आगे जब हायर स्कूल में पढ़ते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को वो गहराई की नॉलेज मिलती है, व्याख्या मिलती है, जिसको कहा जाता है टीचर के द्वारा व्याख्या। बड़े बड़े टीचर्स होते हैं जिनको बड़ी तनख्वाह मिलती है, ऐसे ही भगवान निराकार ज्योति बिंदु भी सृष्टि पर आकर के परम ब्रह्म के द्वारा सत्य ज्ञान का बीज डालता है। और ब्रह्मा के द्वारा वेद वाणी सुनाता है, उस वेद वाणी में सबसे जास्ती पुराना ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता का है। लेकिन उस ब्रह्मा के द्वारा गीता सुनाई गई, उसका विस्तार से व्याख्यान नहीं मिला। ब्रह्मा माँ के द्वारा, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, उसी गीता ज्ञान का विस्तार तब मिलता है जब वो भगवान निराकार ज्योति बिंदु फिर से परम ब्रह्म में प्रवेश करके सुप्रीम टीचर का रूप धारण करता है। जगत गुरु भी कह सकते हैं, ऐसा सुप्रीम टीचर जो गीता ज्ञान के, वो गीता ज्ञान नहीं जो संस्कृत में लिखी गई किताब है, वो तो विद्वान पंडित आचार्यों व्यास जैसे विद्वानों का काम हुआ। भगवान तो साधारण तन में आता है और साधारण भाषा में बोलता है और अविनाशी भारत भूमि में आता है। जिस भारत भूमि का कभी विनाश होता ही नहीं, अमेरिका 500 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर थी ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया 300-350 साल पहले मनुष्य मात्र को इसको जानकारी ही नहीं थी। ऐसे ही सारे धर्मखंड, विदेशी हो या विधर्मी हो, वो सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। तो जो पहले थे ही नहीं अब हैं, वो विनाश काल में क्या होगा, रहेंगे ही नहीं, वो विनाशी धर्मखंड है। क्योंकि उन धर्मखंडों में धर्म पिताओं ने आकर के जो ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान नहीं अज्ञान सुनाया। झूठ सुनाया, असत्य को अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वो धर्म पिताएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं, वो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान ही नहीं सकते, जैसे मनुष्य मात्र नहीं जान सकता। वो परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु जो सदा शिव है, वो त्रिकालदर्शी होने के कारण श्रीमद् भगवत गीता जिसकी यादगार है बनाई है मनुष्यों ने, मनुष्य गुरुओं ने, वो गीता का असली ज्ञान आकर के सुनाता है साधारण मनुष्य तन के द्वारा जो गीता में लिखा हुआ है। कि साधारण मनुष्य तन में आए हुए मुझे परमात्मा को मूढ़मति लोग नहीं जान सकते। मूढ़मति माने मूर्ख, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, देह के संबंधियों में धरी रहती है, देह के पदार्थों में धरी रहती है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश पांच तत्वों से बने हुए इस विनाशी शरीर में लगी रहती है। विनाशी शरीर और विनाशी शरीर की इंद्रियों का सुख भोगने में लगी रहती है। साक्षात भगवान आकर के अविनाशी आत्मा का ज्ञान देते हैं। वो मूढ़मती मूर्ख लोग उसे पहचान ही नहीं पाते, न भगवान को पहचान पाते, न उसके ज्ञान को समय पर धारण कर पाते। तो जो पूरा पूरा धारण करते होंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होते होंगे, आत्मा को जान करके ज्योतिबिंदु आत्मा के स्मृति में मन बुद्धि को एकाग्र करते होंगे, वो एकाग्र करने वाली आत्माएं वो ही परमपिता परमात्मा शिव को नंबरवार पहचानते हैं। और नंबरवार से मनुष्य सृष्टि में राजयोग सीख करके राजपद पाते, जो राजाओं की पदवी दुनिया में कोई ने नहीं पाई। जिन्होंने धर्म पिताओं से विनाशी ज्ञान लिया, धर्म पिताओं के वंश में हिस्ट्री के अनुसार बड़े बड़े हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर हुए, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेकर आए थे इस दुनिया में कि हम सारी दुनिया के ऊपर राज्य करेंगे, लेकिन कोई भी सारी दुनिया पर राज्य नहीं कर सके, क्योंकि उनकी बुद्धि में अधूरा ज्ञान था, ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। ईश्वर जब इस सृष्टि में आते हैं तो वो ही ऐसी मत देते हैं, ऐसी युक्ति बताते हैं जीवन जीने की कि मनुष्य वो पद पा सकता है जो राजा का पद अर्थात कंट्रोलिंग पावर दुनिया में कोई भी धर्म पिता ने नहीं सिखाई। उन धर्म पिताओं ने अपने अपने धर्म स्थापन किए, धर्म स्थापन करके चले गए, राजा ही स्थापन नहीं किए। लेकिन भगवान है, ऊंचे से ऊंचा भगवान जो इस मनुष्य शक्ति में आकर के सत्य ज्ञान की ऐसी युक्ति बताता है जिसे राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। जिस पढ़ाई से मनुष्य राजाएं बनते, मनुष्य तो क्या इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, जज बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, और जो भी बनाएंगे वो आधीन रहने वाला बनाएंगे या स्वाधीन रहने वाला राजा बनाएंगे? आधीन बनाएंगे। और भगवान क्या करता है? भगवान अपने बच्चों को राजयोग सिखा करके राजा बनाता है, जिसके राज्य में वो राजा सदा स्वाधीन है, किसी के अधीन नहीं होता है। ऐसी पढ़ाई राजाई की राजयोग सिखा करके गीता ज्ञान के द्वारा कोई दुनिया में पढ़ा ही नहीं सकता। इसलिए आज भी दुनिया के सभी धर्मावलंबी श्रीमद् भगवत गीता की ज्ञान की गहराइयों का लोहा मानते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते ये गीता ज्ञान किसने आकर के सुनाया था। भारत में जो अपन को हिंदू कहते, हिस्ट्री में जो हिंदू विख्यात हैं, इस्लाम धर्म आया तो हिंदू कन्वर्ट होकर के इस्लामी बने, महात्मा बुद्ध आया तो हिंदू कन्वर्ट होकर के बौद्धी बने, क्राइस्ट आया तो हिंदू ही कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बने, गुरु नानक आया तो हिंदू ही कन्वर्ट होकर के क्या बने, सिख बन गए, और जब शंकराचार्य आए तो हिंदू ही कन्वर्ट होकर के सन्यासी बने, और हिंदुओं में जो बड़े बड़े राजाएं थे उन राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया, त्याग दिया और सन्यासी बन गए। जो सन्यास धर्म भगवान ने नहीं स्थापन किया, भगवान ने गीता ज्ञान सुना करके सन्यास वृत्ति सिखाई या प्रवृत्ति में रहना सिखाया। अर्जुन गृहस्थी था या सन्यासी था? तो देखो भगवान आकर के बताते हैं, इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य सृष्टि का निर्माण भी नहीं हो सकता जब तक वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आकर के, परम पुरुष जिसे परम पिता कहा जाता है, वो परम पिता इस सृष्टि पर आकर के परम ब्रह्म के रूप में कोई मनुष्य आत्मा का आधार न ले, कोई भी परिवार के कोई भी पिता को परिवार के भांति बनाने के लिए पहले पहले माता को आधार बनाना जरूरी है। जैसे धरणी माता और उसमें बीज बोया जाता है, बीज बोने वाला पिता, तो वो परमपिता ज्ञान का बीज बोने के लिए, सत्य का बीज बोने के लिए, सत्य युग की स्थापना करने के लिए, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए इस सृष्टि पर आता है। और सृष्टि में से पहली पहली रचना रचता है परम ब्रह्म। बड़े से बड़ा इस सृष्टि का जिम्मेवार, जैसे कोई भी परिवार में परिवारजनों के लिए पहली पहली जिम्मेवार कौन बनती है, है? पिता की माता है? कौन बनती है जिम्मेवार? बिना उसके लिए परिवार बनता ही नहीं। माता के बगैर परिवार बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो परम पिता, परम पुरुष, पुरुष का अर्थ है शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, आराम से जिस मनुष्य शरीर में, मनुष्य के रथ में आता है, अमन चैन से पार्ट बजाता है, कभी दुखी होने का तो नाम ही नहीं। तो वो परम पुरुष है, शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा, परम पिता परमात्मा। वो पुरुष इस सृष्टि में आकर के उसे क्या चाहिए, सृष्टि में आकर के इसे क्या चाहिए, इस पुरानी सृष्टि में, इस दुखी सृष्टि में, नारकीय सृष्टि में आकर के उसे क्या चाहिए? अरे अरे, एक पिता को पिता बनने से पहले क्या चाहिए? माता चाहिए। माता रूपी रचना चाहिए, पहली पहली रचना है पुरुष की। बच्चा तो बाद में पैदा होता है। तो इस मनुष्य शक्ति में से ऐसी आत्मा को उठाता है जो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में आत्मा होने के बावजूद भी, चैतन्य आत्मा होने के बावजूद भी टोटल जड़त्वमयी बुद्धि वाली बन जाती है। क्योंकि वो सारी मनुष्य शक्ति का पिता है। ऐसे नहीं सतयुग के देवताओं का ही पिता है, द्वैतवादी द्वापर युग के धर्म पिताओं का ही पिता है, धर्म पिताओं को ग्रेट फादर्स कहा जाता है, पर तो वो सभी धर्म पिता हैं आदम को एडम को मानते रहे परंतु जानते नहीं। वही आदम एडम आदिदेव आदिनाथ वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, क्योंकि बापों का बाप उसमें प्रवेश करता है। सभी आत्माओं का बाप शिव, तो मनुष्य सृष्टि का पिता ग्रेट फादर्स का भी बाप है, तो ग्रैंडफादर हुआ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और शिव पिता मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उसका भी पिता है। तो वो परम पिता शिव आत्माओं का बाप, वो भी बेहद का बाप हो गया, और मनुष्य सृष्टि का बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, एडम जिसे कहा जाता आदम जिसे कहा गया वो सब का बाप, वो भी बेहद का बाप। तो शिव बाप जब आते हैं इस मनुष्य सृष्टि में, उस बड़े से बड़े पार्टधारी को चुनते हैं, किसको है मनुष्य सृष्टि के बाप को चुनते हैं, पुरुष रूप में चुनते हैं या स्त्री शोला में चुनते हैं, चुनते तो पुरुष रूप में है, लेकिन वो ऐसा पुरुष रूप है नर रूप है जो देवों का भी देव महादेव कहा जाता है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी उनका भी आदम एडम और छोटे छोटे धर्म मत पंथाए जिनमें एक ऐसा ग्रुप आया जो धर्म के नाम पर टोटल अधर्म नास्तिक, किसी पर आस्था ही नहीं, ना आस्था ना आस्था माने नास्तिक, भगवान को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, स्वर्ग को नहीं मानता, नरक को नहीं मानता, दुनिया में किसी को नहीं मानता, इतना देहंकारी कि देहंकार में आकर के ऐसी चीज बना देता है जो सारी दुनिया को नष्ट कर दे, एटमिक एनर्जी। देखो ये देहंकार मेंटेलिटी को कितना नीचे गिराता है, एटम बम बनाने वालों को ध्यान ही नहीं कि हम जो चीज बना रहे हैं उसका विस्फोट होने से सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी और उसमें हम भी नहीं बचेंगे। अपनी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रहता। क्यों? जो देह अहंकारी होते हैं वो अहंकार में आकर बड़ा क्रोध करते हैं। जैसे प्रसिद्ध है, क्रोधी आदमी अपने घर के बर्तनों को भी फोड़ देता है। ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि वाले, उनको जड़ बुद्धि वाला कहें या चैतन्य बुद्धि वाला कहें, उनका भी इस सृष्टि में कोई बाप होगा। उन नास्तिकों का भी कोई बाप इस सृष्टि पर होगा या नहीं होगा? जो उनका भी बाप है, क्योंकि वो एटमिक एनर्जी तैयार करने वाले देहकारी वैज्ञानिक पांच जड़ तत्वों का विश्लेषण करने में इतने पीछे जाते हैं कि वो अपने सामने भगवान को भी कुछ नहीं मानते। टोटल नास्तिक। तो मनुष्य सृष्टि में सबसे नीच कौन हुए? है? जो सारी सृष्टि का विनाश करने पर तुले हुए। लेकिन बिचारे विनाशी बारूद को तैयार करते करते, तैयार तो करते चले जाते लेकिन उसका विस्फोट करने में डरते हैं। बीस बीस मेगावाट की एटम बम्बिया 1945 में विस्फोट की थी और उन बम्बियों का घातक रिजल्ट उन वैज्ञानिकों को आज भी हॉस्पिटलों में देखने को मिलता है, जहां उस समय के घायल लोग करा रहे हैं। मरते भी नहीं, उनकी कराहट देख करके उनको भय पैदा होता है कि अगर हमने इस एटमिक एनर्जी का विस्फोट करना शुरू कर दिया तो हमारा क्या हाल होगा। हम भी वर्षों वर्षों ऐसे ही पड़े पड़े कराहते तो नहीं रहेंगे? तो हिम्मत नहीं कर पाते, अपनी बनाई हुई रचना को नष्ट करने की हिम्मत नहीं है। तो उनका भी बाप है कोई इस सृष्टि पर, जो सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश कर देता है। तो बताओ, उन नास्तिकों के नास्तिकपने से ज्यादा बड़े से बड़ा नास्तिक उस एटमिक एनर्जी को विस्फोट करने वाला हुआ या एटमिक एनर्जी को बनाने वाले वो देह अहंकारी रशियंस हुए? ज्यादा देह अहंकारी कौन हुआ?
अरे
एटमिक एनर्जी को बनाने वाले ज्यादा अहंकारी देह अहंकारी हुए या उनको विस्फोट करने की हिम्मत करने वाला ज्यादा देह अहंकारी हुआ है? विस्फोट करने वाला उनका भी बात साबित होता है, वो तो जड़त्व में ही बुद्धि वाले बनते ही हैं। अपन को टोटल पांच तत्वों से बनी हुई देह समझते ही हैं, लेकिन जो उन नास्तिकों का भी बाप है इस मनुष्य सृष्टि में, वो तो टोटल अपन को रथ समझ करके बैठ जाता है। रथ माने पांच तत्वों का संघार। तो प्रसिद्ध है भगवान ने आकर के अर्जुन की आत्मा को आकुपाई किया या रथ को आकुपाई किया है? आत्मा को आकुपाई किया, रथ लिया या आत्मा अपने कंट्रोल में ली है? रथ अपने कंट्रोल में लिया। रथ माने पांच जड़ तत्वों का पुतला, उसको कंट्रोल किया। भगवान को रथ चाहिए, पांच तत्वों का पुतला चाहिए या आत्मा चाहिए है? पांच तत्वों का जड़ पुतला चाहिए। आत्मा है तो उसके बच्चे हैं, वो स्वयं आत्मा है। बच्चों को तो स्वतंत्रता सिखाने आया है। क्या सिखाने आया है? स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, राजा बनना है। स्वाधीन रहो, स्वाधीन बनाओ, ना आधीन बनो ना आधीन बनाओ। तो वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो पांच तत्वों के संघात प्रकृति के पुतले को ग्रहण करता है। इसलिए बोलता भी है कि मैं जिस रथ में आता हूं उस रथ में से शिव को अलग कर दो तो क्या बचेगा है? शिव को अलग कर दिया रथ में से तो क्या बचा? जोर से बोलो, शव बचा। माने मुर्दा है, उसमें कोई चैतन्यता का भाव नहीं है। इसलिए मुसलमानों क्रिश्चियंस आज भी कहते हैं कि मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद रूह कब्र दाखिल हो जाती है। कब्र माने मिट्टी, क्या बन जाती है? हैं? मिट्टी में मिल गई, मिट्टी बन गई। आत्मा मिट्टी बनती है क्या? हैं? मिट्टी नहीं बनती है, लेकिन अपन को मिट्टी जैसा समझ कर मिट्टी स्वरूप बन जाती है। इसलिए भगवान जिस रथ को लेता है वो रथ प्रकृति का बीज रूप पुतला है। क्या? पांच जड़ तत्वों वाली प्रकृति पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का बीज रूप है, जिस बीज का कभी विनाश इस सृष्टि पर नहीं होता है। इसलिए वो बीज रूप लिंग साकार शरीर, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई जाते, वो हाथ पांव नाक आंख कान की स्मृति से परे हो जाता है, ऐसी आत्मिक स्थिति धारण करता है। संपूर्ण आत्मा बन जाता है, क्योंकि परमपिता शिव निराकार ज्योति बिंदु उसमें प्रवेश करता है। तो संग के रंग से क्या बन जाता है आखिरी? देह बन जाता है, देह अहंकारी बन जाता है कि आत्मा बन जाता है? आत्मा बन जाता है, उसको कहते हैं आत्मलिंग। क्या कहते हैं? आत्मलिंग। वो आत्मलिंग आत्मा का लिंग है, चिन्ह है। आत्मा अविनाशी और वो आत्मलिंग भी अविनाशी। वो लिंग प्रकृति का पुतला है बीज रूप में। इसलिए प्रकृति रूपी माता है और वो प्रकृति पति है। आत्मा का पति है या पांच तत्वों के संघात शरीर रूपी रथ का पति है? है आत्मा का पति? आत्मा तो पुरुष है, पुरुष का पति कैसे होगा? है आत्मा स्वयं पुरुष है, स्त्री नहीं। हाँ, आत्मा जिस शरीर का आधार लेती है, जैसे कोई पिता माता का आधार लेता है, ऐसे ही वो शरीर रूपी रथ माता पांच तत्वों का पुतला प्रकृति का बीज रूप और सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो हीरा है। अच्छा, पांच तत्वों के संघात लिंग में रहने वाला हीरो पार्टधारी। हीरो पार्टधारी वो बनता है या नीचे वाला बनता है? वो हीरो पार्टधारी नहीं बनता, वो आकर के युक्ति बताता है कि मुख्य मुख्य पार्टधारी या हीरो पार्टधारी कैसे बना जा सकता है। गीता में भी लिखा है अभ्यास है ना तो कौनते वैराग्य किधर ही है? अभ्यास और वैराग्य, इन दो बातों से आत्मिक स्थिति में एकाग्र हुआ जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है मन को एकाग्र करने का, अमन बनने का
अमन चैन से रहने का यही एक रास्ता है। क्या? आत्मा ज्योतिबिंदु को याद करो भ्रकुटी के मध्य में, कहा नाक में नहीं, क्या कान में नहीं, कहां याद करो, भ्रकुटी के मध्य भरी पूरी कुटी है, जहां इस शरीर में उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा निवास करती है, उत्तमांग में, जिसकी यादगार में बिंदी लगाती हैं माताएं, और पुरुष टीका लगाते हैं। क्या हिस्ट्री में ये बात है कि राज परिवार के पुरुष जब युद्ध में जाते थे तो परिवार की कन्याएं माताएं टीका लगाती थी, माने विजय का टीका लगाती थी, विजय का के आना, हार खा के नहीं आना, विजय का तिलक। यही बात है कि परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, जिस मनुष्य तन में रथ में प्रवेश करते हैं पहले पहले, उसको विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं। और बताते हैं तुलसीदास चंदन किसे तिलक दे रघुवीर, माने तुलसीदास की आत्मा जो रामायण लिखने वाली है जिसके लिए बोला ब्रह्म वाक्यों में, ब्रह्मा की वाणी में ही बोला कि शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी हैं लिखने वालों ने, तो रामायण की आत्मा नहीं लिखी है? अरे सब जानते हैं तुलसीदास ने लिखी, लेकिन वो तुलसीदास आज से जो 400-500 वर्ष पहले हुए, इस सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली वो तुलसीदास की आत्मा कौन सी आत्मा है जिसको रघुवीर माने भगवान तिलक देते हैं विश्व की बादशाही का, वो ही आत्मा है जो राम का जीवन चरित्र रखती है। राम है ही सूर्यवंशी, किसके वंश में पैदा हुआ, सूर्य के वंश में, गीता में भी लिखा है जब मैं आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं, सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो वो सूर्य इस सृष्टि का चैतन्य ज्ञान सूर्य जो टाइटलधारी है उस ज्ञान सूर्य का, उस टाइटलधारी ज्ञान सूर्य को शिव आकर के ऐसे ज्ञान बाण देते हैं पुरुषार्थ रूपी धनुष देते हैं
जो धनुष जितना लचीला बनाना चाहो कर्म करने के लिए, ईश्वरीय सेवा करने के लिए, धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं ना तो यूं सिकुड़ता है। लचीला है या कड़क है? लचीला माने शरीर रूपी धनुष की बात है। जिस शरीर रूपी धनुष को चाप हिंदी में कहा जाता है, जहाज भी कहा जाता है, शंकर चाप जहाज, नानक चाप जहाज, माना वो शरीर रूपी धनुष ऐसा जहाज है इस संसार सागर में, ये ही चढ़ी उतरे पार नर, जिस पर सवार होकर के नर माने मनुष्य मात्र इस सृष्टि के इस संसार सागर को, विषय सागर को पार चले जाएंगे। कहाँ? स्वर्ग में, जहां देवताएं रहते अमर। देवताएं निर्विष होते हैं या विष पीने वाले होते हैं? निर्विष होते हैं, उनमें विषय विकार होते ही नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान आकर के गीता ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा के मुख से जो महामंत्र देते हैं, क्या महामंत्र? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो उसको मन है, है? मन तो चलायमान होता है, चलायमान मनुष्य का मन चलायमान होता है। देवता है तो एकाग्र मन है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, देह की इंद्रियों को याद नहीं करेगा, आत्मिक स्थिति में रहेगा, पक्का देवता। देह की इंद्रियों को याद करने वाला कच्चा देवता, चाहे ज्ञान इंद्रियों चाहे कर्म इंद्रियां हो, ऐसी कच्ची देवात्माएं द्वैतवादी द्वापर युग से धर्म पिताओं के धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। इसलिए नौकुल के ब्राह्मण गाए हुए हैं, एक जैसी कुरी नहीं है, ऊंचे से ऊंची कुरी है सूर्यवंश, फिर नंबर वार चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश। तो इन वंशों में जाकर के जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुई ब्राह्मण आत्माएं हैं, पक्का पक्का ज्ञान लेती हैं, तो सूर्यवंशी बनती हैं। नंबर वार कच्चा ज्ञान लेती हैं तो चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी बन पड़ती हैं। नौकुरियों के ब्राह्मण गाए गए हैं ना, तो कच्ची कुरी वाले, कम ज्ञान लेने वाले, ईश्वरीय ज्ञान को कम महत्व देने वाले दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं।
जो अपने धर्म के पक्के हैं,
कभी किसी धर्म में जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होते,
वो मनुष्य सस्य रूपी वृक्ष में जो तना नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है सीधा, ऊर्ध्वगामी होकर रहते हैं, न दाई ओर की डालियों बौद्ध धर्म सन्यास धर्म सिख धर्म आदि में कन्वर्ट होते, न बाई ओर की डालियों में वाम मार्गी धर्मों में इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि में कन्वर्ट होते। वो श्रेष्ठ सूर्यवंशी आत्माएं गीता का ये उपदेश पक्का याद रखती हैं। क्या? आत्मा अपना स्वयं ही मित्र है और आत्मा अपना स्वयं ही दुश्मन है। कोई दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की बात ही नहीं है। भगवान ने आकर के ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर वेदवाणी द्वारा ज्ञान देकर जो भाग्य बांटा, वो नंबरवार भाग्य लेने वाले हैं नौकरियों के ब्राह्मण, एक जैसा भाग्य लेने वाले नहीं है। इसलिए गायन है, कहते भी हैं, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा था तो क्या सोए हुए थे? तो अज्ञान नींद में सोए हुओं की यादगार है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण देह का जील डॉल डील वाला था या नहीं था? रावण से भी ज्यादा डाउल डील वाला शरीर था, देह थी, या दुबला पतला था? है ज्यादा ही डाउल डील वाला। इससे क्या साबित होता है कि रावण कुंभकर्ण मेघनाथ भी ब्राह्मण थे। जब भगवान ने भाग्य बांटा था तो जो सोए रहे देह अभिमान की अज्ञान की नींद में, वो कुंभकर्ण कहे गए। कोई अब्बल नंबर कुंभकर्ण भी हुआ होगा, वो रावण कहे गए जो बड़े प्रकांड विद्वान ज्ञानी थे। उनमें नंबर वन रावण भी कोई हुआ होगा। रावण का अर्थ यह रावयते लोकान, लोगों को जो रुलाता है वो रावण। प्रकांड विद्वान तो था लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में चोरी चकारी करने वाला था या श्रेष्ठ था? चोरी चकारी करने वाला चोर डकैत लफंगा था। इसलिए ज्ञानी होना तो पसंद करते हैं लेकिन रावण जैसा ज्ञानी बनना कोई पसंद नहीं करता। रावण को दस शीश दिखाते हैं और राम को एक सिर दिखाते हैं। सिर माने बुद्धि, बुद्धि माने अकल, मत। माना राम वाली आत्मा ने एक ईश्वर से मत ली, जो भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है उससे मत ली, बुद्धि ली, और कोई की बात कान पर नहीं धरी। सुनते हुए भी न सुनना, देखते हुए भी न देखना, उसको शास्त्रों में एकलव्य भी कहा गया है, एक को लव करने वाला। जो गीता में लिखा है माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक को याद कर, दे दे के संबंधों से, दे के संपर्कियों से, दे के पदार्थों से नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो जाना चाहिए। कोई कितना भी जन्म जन्मांतर का संबंधी आत्मा साबित तो हो रहा हो, क्योंकि बहुत जन्मों की कोई संबंधी आत्मा साबित होगी ज्ञान के आधार पर, तो उससे लगाव ज्यादा लगेगा ना, नहीं लगेगा पूर्व जन्मों के हिसाब से। तो कोई कितना भी गहरा संबंधी हो, चाहे राम वाली आत्मा के लिए राम की सीता ही क्यों न हो, या दूसरे शब्दों में नारायण वाली आत्मा के लिए लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा ही क्यों न हो, या जगत पिता शंकर के लिए पार्वती का पार्ट बजाने वाली आत्मा ही क्यों न हो। जो पार्वती का विरुद्ध है, वरों शंभु नतु रहों कुंवारी, ऐसी पवित्रता कि वरण करूं जीवन लेकर के तो एक शंकर को ही वरण करूं, कोई दूसरे मनुष्य मात्र को वरण नहीं करूं, जगत पिता को ही वरण करूं। अगर पुरुष का जन्म लेती हूं तो कुंवारी रहूं, आजन्म ब्रह्मचारी रहूं, सन्यासी रहूं, ऐसी आत्मा जो 84 के चक्र में एक आत्मा के सिवाय कोई दूसरे के साथ शरीर का गहरा संबंध, इंद्रियों का गहरा संबंध न जोड़ने वाली रही हो, ऐसी आत्मा को भी याद करना है या बुद्धि से त्याग देना है, हैं? याद करना है। हाँ, भगवान का तो यही विरुद्ध है, क्या मुझे एक आत्मा को याद कर, एक के अलावा और कोई को याद है। मामेव नमस्कुरु, मेरे को ही मन नमन कर, बुद्धि झुका, मेरी ही बात मान। और बोला एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा।
और जिनके अंदर व्यभिचारी ज्ञान का बीज पड़ेगा उसकी बुद्धि कैसी हो जाएगी? व्यभिचारी बुद्धि हो जाएगी। वो व्यभिचारी बुद्धि वाली आत्माएं द्वैतवादी द्वापर युग से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि को फॉलो करने वाली बनेंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी दूसरे धर्मों में, क्योंकि यहां दूसरों से सुना तो ब्रॉड ड्रामा में वहां भी दूसरों से सुनेंगी और बरगलाए में आ जाएंगी। आत्मा का पतन हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्ट संग लग जाएगा। श्रेष्ठ संगी बने थे सूर्यवंशी बने थे और फिर क्या हो गए? ज्ञान सूर्य से सुनने वाले बने थे लेकिन बाद में औरों से सुनने लगे। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं सदगुरु निंदा सुनिए न काना, हो पाप गौ घात समाना। क्या सदगुरु की निंदा कान से भी न सुने, अगर सुन के धारण कर लिया तो जो गौ हत्या का पाप होता है वो ही पाप को वहन करने वाला बनेगा। अब जानवर गौ की हत्या की तो बात ही नहीं है, क्या भगवान को मनुष्य नहीं मिले थे? मनुष्य आत्माएं नहीं मिली थी पालना करने के लिए, ज्ञान की पालना करने के लिए मनुष्य आत्माएं नहीं मिली, जानवर मिल गए। भागवत कथा में ऐसे लिख दिया, मनुष्यों ने लिखा या भगवान ने लिखा? है मनुष्यों ने लिखा, मनुष्य तो विकारी बुद्धि होते ही है। रामायण में दिखा दिया भगवान ने बंदरों की सेना ले ली, भगवान को मनुष्य मिले ही नहीं, रावण को मनुष्य मिले और भगवान को मनुष्य नहीं मिले, तो किसकी सेना ले ली? बंदरों की सेना ली। अरे भाई ये कवियों की भाषा है, रामायण के पहले कवि हुए हैं वाल्मीकि, वो ही हीरो पाटधारी आत्मा, ऊंचे से ऊंचा कवि मनुष्य सच्ची में। बंदरों की सेना नहीं ली लेकिन जो इस मनुष्य सृष्टि में भगवान के आने पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाटधारी आत्माएं बनी थी, सारी मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्माएं बनी थी, बीज माने बाप, ऐसे भगवान के डायरेक्ट बच्चे बनकर के पालना लेने वाले, सन्मुख बैठ करके ज्ञान लेने वाले, वो मनुष्य शक्ति की ऊंची पाटधारी आत्माएं जो आत्मिक स्टेज धारण करती हैं परिपक्व रूप में, अपने को ज्योति बिंदु समझ कर बैठ जाती हैं, प्रैक्टिस कर करके। तो भगवान के ऊंचे से ऊंचे बच्चे हुए ना, भगवान के बच्चे तो 500 करोड़ भी हैं, लेकिन नीचे धर्म में कन्वर्ट होने वाले या एक को फॉलो करने वाले है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए तो बाप के असली बच्चे तो रहे नहीं। तो जो असली बच्चे हैं, अटल और अखंड रहते हैं, आत्मिक स्थिति धारण करने में, वो ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाले बच्चे द्वैतवादी द्वापर युग में आकर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के फॉलोअर्स न बनते हैं तो भी दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स भारत में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। तो उनका संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा हो, राजा का बच्चा हो और गरीब आदमी का भी कोई बच्चा हो और दोनों कुसंग में आ जाए तो ज्यादा कौन बिगड़ेगा है? बड़े आदमी का बेटा ज्यादा बिगड़ेगा। तो ऐसे ही ये दुनिया की सबसे पावरफुल आत्माएं ये कुसंग में आकर के द्वैतवादी द्वापर युग से जब से धर्म पिताएं आते हैं देहधारी इनके संग में और इनके फॉलोअर्स के संग में आकर के सबसे नीच कर्म करने वाले बन जाते हैं। और गिरते गिरते अंत तक इतने गिरते हैं कि राम वाली आत्मा रावण बन जाती है और जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर्स सारी सृष्टि को रुलाने वाले नहीं बनते हैं तमो प्रधान बनने पर है? बनते हैं। इतने तामसी बनते हैं कि दुनिया में जो एटमिक एनर्जी तैयार करने वाले नास्तिक हैं रशिया के, वो जितना भय पैदा नहीं कर पाते दुनिया में उनसे कई गुना भयंकर रूप धारण करने वाले ये राम और राम के फॉलोअर्स बन जाते हैं जो प्रजापति के मनुष्य शक्ति रूपी यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। ये वही आत्माएं हैं जो सृष्टि के आदि में शिव समान निराकारी स्टेज धारण करने वाली शालिग्राम जैसी बनी थी, जिनकी यादगार में यज्ञ रचे जाते थे, लाखों की तादाद में शालिग्राम मिट्टी के बनाए जाते। मिट्टी पत्थर के क्यों है? क्योंकि ये वही आत्माएं हैं जो सत्य के अंत में टोटल मिट्टी जैसी बन जाती है। मिट्टी ही ज्यादा संगठित होती है तो पत्थर बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते। जैसे शिव जिसमें प्रवेश करता है वो बड़ा रूप शरीर लिंग के रूप में पूजा जाता है, आज पत्थर के रूप में पूजा जाता है कि स्वर्णलिंग के रूप में पूजा जाता है,
क्यों? क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गया, नहीं तो प्राचीन काल में स्वर्ण लिंग भी बनाए जाते थे, फिर रजत लिंग चांदी के लिंग भी बनाए जाते थे, फिर ताम्र लिंग भी बनाए जाते थे। आज वो नहीं देखने को मिलते, क्यों? क्योंकि शिव जिसमें प्रवेश करता है वो चिन्ह स्वरूप यादगार आत्मा टोटल पत्थर बुद्धि बन जाती है। जड़त्वमयी वैज्ञानिकों की बुद्धि जैसे पत्थर बुद्धि बनी हुई है, उनका भी बाप बन जाती है और सारी सृष्टि का विनाश कर देते। कहेंगे जब विनाशकारी बनती है तो उसमें थोड़ी भी भावना होती है मनुष्य शक्ति के मानवीय बच्चों के प्रति? भावना होती है? बिल्कुल भावना नहीं होती, पूरा पत्थर बुद्धि। ऐसी पत्थर बुद्धि को साथ देने वाले भी पत्थर के शालिग्राम कहे जाते हैं। शालिग्राम छोटे छोटे होते हैं और लिंग बड़ा दिखाते हैं, वो बाप है वो बच्चे हैं। इसलिए यादगार में प्राचीन समय में जब यज्ञ रखे जाते थे तो लाखों की तादाद में कोई सेठ लाख शालिग्राम बनवाता था, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख भी बनवाता था। सुबह को बनाते थे, शाम को बिगाड़ देते थे। माना नई शक्ति का आदि है प्रातःकाल, और नई शक्ति कभी पुरानी होगी या नहीं होगी? तो कलयुग के अंत में पुरानी बन जाती है तामसी। तो सभी शालिग्राम बिगाड़ दिए जाते हैं। जो आत्मा की यादगार हैं, उन शालिग्रामों ने भी आत्मिक रूप धारण किया था, लेकिन उनमें बंधन भी दिखाते हैं। जन्म मरण का बंधन तो लगा ही रहता है। उन शालिग्रामों में से एक भी नहीं है ऐसा जो जन्म मरण के चक्र में ना आता हो। एक शिवलिंग ही यादगार है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, उसे कहते हैं जगत पिता। इसलिए शंकर के माता पिता का नाम कोई नहीं जानता, उनका जन्म कोई नहीं जानता, उनकी मृत्यु कोई नहीं जानता। वो आत्मा जो मनुष्य शक्ति का बाप है वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। मनुष्य शक्ति रूपी रंगमंच पर 84 के पार्ट में से क्षण मात्र भी उसका पार्ट खत्म नहीं होता। शरीर भी रहता है और आत्मा भी रहती है, जिसकी यादगार पुराने तो पुराने सोम मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में देखी जाती रही। सोमनाथ मंदिर में
लिंग है शरीर की यादगार, पत्थर का लिंग था और उसमें हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा जो हीरो पार्टधारी कहा जाता है, वो हीरा आत्मा की यादगार। कौन सी आत्मा? ऊंचे से ऊंची आत्मा या वो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा? जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा उसकी बताई हुई युक्तियों को पूरा पूरा फॉलो करती है। उसके बताए हुए रास्ते को पूरा ग्रहण करती है। इसलिए पूरे 84 के चक्र में आती है, ऑल राउंड पार्ट बजाती है। इसलिए सत्य कही जाती है, सत्य कभी नष्ट नहीं होता और असत्य नष्ट हो जाता है। तो एक आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाली, पूरे सृष्टि चक्र में आने वाली, पार्ट बजाने वाली, बाकी सभी आत्माएं कुछ न कुछ परसेंटेज में सत्य या असत्य, कुछ न कुछ झूठ जरूर भरा पड़ा है। इसलिए भगवान बाप कहते हैं कि अपना पूरा पोता मिल लेने वाला कोई करोड़ों पुरुषार्थियों में से एक है, बाकी अपना पूरा दिल खोल करके अपने जीवन की कमजोरियों को, गलतियों को पूरा नहीं बताते।
सच्चाई से नहीं बताते तो सब तब आपको क्या है? सच्चाई भी है तब तब आप इस सच्ची पर आकर के सत्ययुग स्थापन करते हैं। सब सनातन धर्म स्थापन करता है, उस धर्म के मुकाबले और दुनिया के सारे धर्म सत्य हैं,
गड्ढे में ले जाने वाले हैं। जो सत्य सनातन धर्म भारत में स्थापन होता है, इसलिए भारत खंड अविनाशी खंड है। भारत खंड माना स्थान भी अविनाशी है। सभी धर्म खंडों का विनाश होगा। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अरब देश सात समुद्र के गर्त में समा जाएंगे, जलमय हो जाएगी, लेकिन भारत अविनाशी खंड है क्योंकि यहाँ है भगवान बाप आते हैं। क्यों आते हैं? दूसरे धर्म खंडों में क्यों नहीं आते हैं? हाँ, दूसरे धर्म खंडों में इसलिए नहीं आते कि दूसरे धर्म खंडों में पलने वाली जन्म जन्मांतर की जो आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो भगवान का पूरा सत्य ज्ञान, भगवान की जो ही पूरी सच्चाई धारण ही नहीं करती।
जो धर्मखंड धारण करता है उस धर्मखंड में भी कोई आत्मा है जिसके नाम पर उस धर्म खंड का नाम पड़ता है भारत, वो चैतन्य आत्मा है जो भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है, जब से भगवान बाप आते हैं देह के धंधे में लगा रहने वाला नहीं, एक होता है स्थूल पेट का धंधा और एक होता है मन बुद्धि रूपी आत्मा का धंधा। जो आत्माओं का बाप है उसका क्या धंधा है? क्या धंधा है? आध्यात्मिक ज्ञान देना, ये उसका धंधा है। आध्यात्मिक का मतलब ये आदि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर क्या क्या है, कितने जन्मों का ऐसा आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पार्ट भरा हुआ है, वो ज्ञान देता है। और धर्म पिता है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर, बड़े बड़े वकील, जज, बड़े बड़े इंजीनियर आत्मा के अंदर का ज्ञान नहीं देते। क्या? पंचभूतों का ज्ञान देते हैं। डॉक्टरों में जो शरीर के पांच तत्व है जिनसे ये शरीर बना है, उस देह का पूरा ज्ञान उनके पास है। इतना सशक्त ज्ञान जो हार्ट को निकाल के बाहर रख देंगे और दूसरा हार्ट आरोपण कर देंगे, आदमी मर जाता है जिंदा रहता है, है? जिंदा रहता है। देखो कितना करिश्मा सीखा, लेकिन आत्मज्ञान कहेंगे या देह के पांच तत्वों का ज्ञान कहेंगे? पंचभूतों का ज्ञान इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अध्यात्म ज्ञान वो आत्माओं का बाप ही देता है। और एक ही जन्म में आकर के देता है। जैसे मान्यता है भक्ति मार्ग में, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, मनुष्य जन्म जन्मांतर पुरुषार्थ करे, मनुष्य जन्म लेकर के, तो बहुत जन्मों के बाद कहीं मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु नहीं, भगवान बाप तो कहते हैं कि मैं इसी जन्म में आकर के तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता हूँ और इसी जन्म में तुमको राजा बनाता हूँ। ऐसी पढ़ाई तो मूर्खता हो गई कि इस जन्म में डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में डॉक्टर बना दूंगा, इस जन्म में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में इंजीनियर बन जाना, ये मूर्खता है या होशियारी है? ये तो मूर्खता होगी। भगवान
अपने बच्चों को मूर्ख बनाने नहीं आया है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास ही बनाने नहीं आया। श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास अच्छी चीज नहीं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्या कहा गीता में? ईश्वरीय ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? जो श्रद्धावान है वो ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो अश्रद्धालु है वो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसका दुरुपयोग करेगा, जो अश्रद्धालु है उसको नहीं सुनाना चाहिए। श्रद्धालु को सुनाओ, तो शिव बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो नई सृष्टि बनाने के लिए किसका आधार लेता है? बुद्धिमान का आधार लेता है या बुद्धू का आधार लेता है? है? अच्छा, रथ का आधार लेता है या मनुष्य आत्मा का आधार लेता है? रथ बुद्धिमान होता है। अरे रथ है, टोटल रथ जिसे कहें वो तो मुर्दा हो गया, इसलिए बोला शिव बाबा कहते हो तो शिव बाबा माने साकार निराकार का मेल। परंतु उस साकार निराकार के मेल शिव बाबा में से अगर शिव को निकाल दें तो क्या बचेगा? मुर्दा बचेगा, शव बचेगा। तो सबको याद करना है, सिंगल को याद करना है या रथ और आत्मा दोनों की प्रवृत्ति को याद करना है? प्रवृत्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर रहना है या सन्यासी बनना है? प्रवृत्ति मार्ग में जो सुख है वो सन्यास में सुख नहीं हो सकता। शिव बाप कहते हैं तुम्हें सुख चाहिए या नहीं चाहिए? अरे कोई तो होगा जो ये कहे हमें सुख नहीं चाहिए, है? अरे कोई ऐसा हो जो कहे हमें सुख नहीं चाहिए? दुख ही दुख चाहिए, है? माना इस मनुष्य शक्ति में प्राणी मात्र को क्या चाहिए? सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो सुख चाहिए तो सुख का सागर चाहिए या छोटी मोटी नदी, गड्ढा गड़ीचिया, कोई झील वगैरह वो चाहिए? सागर चाहिए, सुख का सागर। वो भगवान ही सुख का सागर कहा जाता है। उसके मुकाबले, उस एक के मुकाबले सारी दुनिया क्या है, है? दुख का आगार है, एक ही सुख का सागर। सागर किससे जास्ती से जास्ती क्लोज कनेक्शन में रहता है, जल सागर की बात ले लो, धरणी के संयोग में रहता है। दुनिया में तीन हिस्सा सागर है और एक हिस्सा धरणी है, तो कौन किसको गोद में लेके बैठा हुआ है? सागर धरणी माता को गोद में लेकर बैठा, वो जड़ की बात होगी। ऐसे ही जो सुख का सागर है, जिसे भगवान कहा जाता है, वो सुख का सागर जब इस सृष्टि में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो किसको गोद में लेता होगा? परमानेंट, अरे धरणी को लेता होगा। ये धरणी पांच तत्वों से भरी पूरी है। धरणी का कोई हिस्सा ले लो, उसमें जल भी है, अंश मात्र जरूर होगा, वायु भी है, अंश मात्र जरूर होगी, अग्नि भी है, अंश मात्र जरूर होगी। माने धरणी ही एक ऐसी है जिसमें पांचों तत्व विराजमान है। तो परम पिता जब आता है तो किसका आधार लेता है? माता का आधार लेता है। वो माता जड़ लिंग रूप में है या चैतन्य है? जड़ लिंग रूप है, जड़त्व में ही है, इसलिए कोई न कोई एक पॉइंट ऐसा है ईश्वरीय ज्ञान का, जिस ईश्वरीय ज्ञान के पॉइंट को लेकर वो टोटल पत्थर बुद्धि है, वो पॉइंट उसकी बुद्धि में बैठता ही है। क्या पॉइंट, किसी को पता है? नहीं पता। पॉइंट है अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। क्या पॉइंट है? वो लिंग रूप, वो जड़ रूप, वो रथ स्वरूप जिसमें प्रवेश करके उस रथ को कंट्रोल करता है, उसी के लिए खास बोलता है। और बच्चों के लिए तो साबित हो ही जाएगा, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बोलता क्या है, क्या पॉइंट है? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे, ये पॉइंट उस आत्मा को बुद्धि में नहीं बैठता। किस आत्मा को? जो जड़ तुम्हें ही बन गई, जड़ बुद्धियों के संग के रंग में आकर के 100% जड़ बन गई। पांच तत्वों का जैसे
जड़ पुतला, वो भी बीज रूप पुतला बन गया। बीज ज्यादा कठोर होता है, जड़ें ज्यादा कठोर होती हैं, तने की लकड़ी ज्यादा कठोर होती है, पत्तियां ज्यादा कठोर होती हैं, फूल ज्यादा कठोर होता है या फल ज्यादा कठोर होता है, है? है? अरे वृक्ष में कौन सा अंग है जो ज्यादा से ज्यादा कठोर होता है, है? जड़ ज्यादा कठोर होती है, बीज। तो इस मनुष्य शक्ति का जो बीज है वो ऐसा जड़त्वमय बन जाता है कि इस एक ज्ञान के पॉइंट में बहुत ही सख्त है। इसलिए शास्त्रों में उसका क्या पार्ट दिखाया गया है, जो पार्ट इस सृष्टि में कोई ने स्वीकार नहीं किया वो पार्ट उसने स्वीकार कर लिया। क्या विष पाई, क्या किया? इस सृष्टि का जितना भी विष है जो सागर मंथन से पहले पहले निकलता है वो सारा विष उसने पिया। और विष क्या होता है? पराई स्त्री और पर पुरुष के भोग को विष कहा जाता है। जब से ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आए उस समय से ही ये सृष्टि विषयी विकारी बन गई। जो शास्त्र में लिखा है कि विष्णु का जो विकार विराट रूप है वो मस्तक है देवता, ये धड़ है क्षत्रिय और नाभि से लेकर के द्वैत शुरू हो गया। क्या दो हिस्से हो गए, द्वैतवाद शुरू हो गया। एक टांग इधर जा रही है, एक टांग इधर जा रही है, एक धर्म इधर जा रहा है, दूसरा धर्म इधर जा रहा है। तो ये द्वापर युग हुआ कब से, ये द्वैतवाद दुनिया में कब से शुरू हुआ, कितने साल हो गए हैं? जब से इब्राहिम आया। इस्लाम धर्म का पिता, द्वैतवाद शुरू हुआ माना द्वापर युग शुरू हो गया। दो पुर, दो राज्य, दो धर्म, दो कुल, दो भाषाएं, हर बात में द्वैत। तो तभी से ये मनुष्य शक्ति क्या करने लगी है? एक से संतुष्ट नहीं, एक से संतुष्ट नहीं, युग ही द्वैतवादी, व्यभिचारी युग है और कलयुग महाव्यभिचारी। तो ये विष पीने से ढेर सारी बीमारियां पैदा होती, मन बुद्धि का संतुलन बिगड़ता है, शरीर बेडौल बनने लग पड़ते हैं, कि लक्ष्मी नारायण जैसे शरीर होते हैं, आंखों में नूर गायब हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती हैं कि देवताओं की तरह आकर्षक बन जाती हैं, है? नेत्रों का आकर्षण खत्म हो जाता है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। जो देव आत्माएं सतयुग में त्रेता में राम कृष्ण जैसी आत्माएं उनके फॉलोअर्स से प्रजा लंबे समय तक का दीर्घ काल सुख भोगते थे ज्ञान इंद्रियों का, वो ही देव आत्माएं मनुष्य बनकर क्षण भंगुर सुख भोग रहे हैं। क्या इंद्रियों का जो सुख भोगते हैं, जिसे सुख समझते हैं, जो सुख मृत्यु के समय स्त्रियों को याद आता है, तो पुरुष का वो अंग याद आता है जिससे उन्हें बहुत सुख की अनुभूति हुई जीवन में, तो अंतमते सोगते उसी अंग में जन्म ले लेती है। ऐसे ही पुरुष भी सारा जीवन काम विकार प्रधान होने के कारण जिस कामांग से जीवन भर जिस व्यक्तित्व से सुख भोगा, उसी व्यक्तित्व के अंग की याद में शरीर छोड़ते हैं अंतमते सुगते। सारा जीवन जहां बुद्धि लगी रहेगी, सारा जीवन जो संकल्प में रहेंगे, मृत्यु के समय वो ही संकल्प याद आ जाता है और अंतमते सुगते हो गए। तो इतना प्रभाव है काम इंद्रियों का। उन काम इंद्रिय में स्त्री और पुरुष टोटली वाइब्रेशन से डूब जाते हैं। इसलिए गीता में कहा है, अर्जुन ये काम महाशत्रु है, काम की वासना पूरी नहीं होती है तो बहुत क्रोध आता है, कामात क्रोधो अभिजायते। और क्रोध आने पर आदमी बावरा हो जाता है, पागल की तरह आचरण करने लग पड़ता है, मूर्ख बन जाता है, अपने ही घर के बर्तन तोड़ देता है। तो भगवान बताते हैं कि मैं इन पांच विकार रूपी शत्रुओं से तुम्हारी आत्माओं को मुक्त करने आया हूं, तुम संग के रंग में बिगड़ गए। इन कामी इस्लामियों के संग में आने से तुम महाकामी बन गए, एटम बम बनाने वाले क्रिश्चियंस के संग में आकर के तुम महाक्रोधी बन गए, और मुसलमानों के संग के रंग में आकर के तुम महालोभी बन गए। जिन मुसलमानों ने भारत को सोने की चिड़िया समझ करके आक्रमण के ऊपर आक्रमण आक्रमण के ऊपर आक्रमण किए और खूब लूट लूट लपोट किए, बहुत अत्याचार किए लोभ के कारण। ये काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। स्वर्ग में नहीं जाने देते। बढ़िया तरीका है कि स्वयं स्थिति को पहचानो। स्व माने आत्मा, आत्मा क्या है? ज्योति बिंदु है, जैसे गीता में कहा अनुरूप है, अति सूक्ष्म है, जिसकी यादगार में बिंदी लगाते हैं। ब्रकुटी के मध्य में याद करो, ब्रकुटी के मध्य में गोली मारो, तुरंत मर जाएगा। इंदिरा गांधी को मारने वाले ने 27 गोलियां दाग दी छाती में, फिर भी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल लेते जाते रहे, क्योंकि जिंदा बने रहने की संभावना थी। वो जानता होता क्या कि आत्मा ब्रकुटी के मध्य में रहती है, वो तो एक ही गोली में खत्म कर देता। तो किसी का वारंट निकलता है तो पहले पुलिस जाकर के कहां खोजती है, बार बार कहां चक्कर काटती है, हैं? घर में जाके चक्कर काटती है। तो शरीर में आत्मा का घर कहां हुआ? ब्रकुटी का। तो अपने स्थान पर जो तुम्हारा अपना है, ये शरीर तुम्हारा अपना नहीं है, देह नहीं अपनी, क्या है अपनी? आत्मा अपनी। उस आत्म की स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करो तो स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गए, गए के गए कब? जब आत्म की स्थिति में निरंतर याद में पक्के हो जाएंगे। तो ये रास्ता कौन बता रहा है? शिव बाप बता रहे। तो शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, शिव बाबा कर रहे हैं या आत्माओं का बाप कर रहे हैं? शिव बाबा कर रहे हैं, आत्माओं का बाप शिव नहीं कर रहे हैं। जो कहते हैं मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरा शरीर है ही नहीं, तुम आत्माओं के शरीरों के नाम और मेरे आत्मा का नाम शिव। तो स्वर्ग की स्थापना कौन कर रहा है, है? स्वर्ग की स्थापना जो सदा स्वयं स्थिति में रहने वाली आत्मा है, शिव नहीं कर रहे हैं। शिव कर रहे हैं कि नहीं?
आकरा नहीं कर पाएगा, आकरा नहीं कर पाएगा।
हाँ, तो स्वर्ग में सुख होता है और सुख प्रवृत्ति में होता है, निवृत्ति में कोई सुख नहीं होता है। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान अर्जुन को दिया। तो क्या करना है, हैं? क्या करना है? अपन को आत्मा समझ, हैं? आत्माओं का जो बाप है, आत्माओं का बाप शिव को याद करना है। शिव तो स्वर्ग का रचयिता है या नहीं? शिव बाप स्वर्ग रचता है या नहीं रचता है? शिव बाबा स्वर्ग रचता है या शिव बाप रचता है? शिव बाबा रचता, शिव बाप तो रचता नहीं
है? रास्ता दिखाता है,
रास्ता दिखाता है, रचता तो नहीं है। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? जरा साकार तो कुमार भी साकार, तो स्वर्ग साकार है तो उसका रचयिता भी साकार है, इसलिए बोला, बार बार बोला, ब्रह्मा के ब्रह्म वाक्य में ही बोला, बाप को याद करो, ये नहीं बताया कौन से बाप को याद करो, क्योंकि दो बेहद के बाप हैं, कहा बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, घर को याद करो, एक को याद करें या तीन तीन को याद करें?
एक को याद करें।
अरे तो तीन क्यों बोला? बोलते हैं तीन को याद करो, फिर कहते हैं माम एकम याद करो, आखिर क्या करें? एक को याद करें, तीन को नहीं है? हाँ, इसलिए कहा कि जिसकी यादगार मंदिरों में पूजी जा रही है, शिव के मंदिर में, वो एक ही है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, क्या वो एक आत्मा है, दो आत्माएं नहीं है, क्योंकि वो तो कहता है ब्रह्मा को मुख से, न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर जो पुराने से पुराना यादगार है, उसमें लिंग हो या आत्मा की यादगार हीरा हो, वो दोनों ही एक व्यक्तित्व की यादगार या दो की यादगार? एक ही व्यक्तित्व है और एक ही आत्मा है, जिस आत्मा को शिव समान बनने का शिव बाप से रास्ता मिलता है। क्या रास्ता मिलता है या वो बनाता है? रास्ता मिलता है, उस रास्ते पर चल करके, उस तरीके को अपना करके, उस युक्ति को अपना करके जो बाप का विरुद्ध है, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। क्या जैसे मैं हूं निराकारी निर्विकारी, ऐसे ही तुमको बनाकर जाऊंगा, तो सबको एक साथ बनाकर जाएगा या नंबरवार बनेंगे? नंबरवार बनने में जो अव्वल नंबर है वो पहले पहले निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आत्मा बनता है, जिस आत्मा की यादगार हीरा सोमनाथ के मंदिर में दिखाया जाता है, वो हीरा हीरो पार्टधारी की यादगार है, निराकार की यादगार नहीं है। और हीरा आत्मा बिना शरीर के कोई पार्ट बजाएगी है? तो जिस शरीर के द्वारा पुरुषार्थ किया है उस शरीर में ही वास करती है, और जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे वो शरीर भी इस सच रूपी रंगमंच पर अविनाशी पाठधारी है। दो की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति दो से बनती है या एक से? दो की प्रवृत्ति है जिससे ये सृष्टि बनी है। इसलिए गीता में कहा गया अव्यक्त मूर्तिना, उस अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग से सारी सृष्टि जन्म लेती है जड़ और जंगम। और महामृत्यु के समय सारी जड़ जंगम सृष्टि उसी में समा जाती है। ओम शांति।